एक बड़ा प्रसिद्ध भजन था नरोत्तम दास ठाकुर जी का, और अक्सर महान आचार्यों के तिरुभास दिन पर इस भजन का उच्चारण करना चाहिए। तो इस भजन का अनुवाद इस प्रकार से है, या नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर इनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। वो जो कि भागवत प्रेम लेकर आए थे, जिनकी कृपा से हमें भगवत प्रेम का ज्ञान प्राप्त हुआ है, कहाँ है श्रीनिवास आचार्य? वो अप्रकट हो चुके हैं। कहाँ है मेरे स्वरूप दामोदर और रूपा गोस्वामी? कहाँ है मेरे सनातन गोस्वामी? कहाँ मेरे रघुनाथ जिन्होंने पतितों का उद्धार किया है? कहाँ है मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट? और कहाँ है कृष्णदास काविराज? कहाँ है चैतन्य महाप्रभु जो कि बड़े सुंदर रूप से नाचते थे? मैं अपने सिर को पत्थर के साथ मारूंगा। कहाँ है मेरे चैतन्य महाप्रभु जिनकी कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है? और नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे हैं क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथियों का की संगत प्राप्त नहीं हो रही। तो आज एक महान आचार्य सनातन गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, तो इसलिए भजन गाया था। ये भजन की रचना की थी नरोत्तम दास ठाकुर, और एक और नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो बोले, जिसमें हम सनातन गोस्वामी जी से कृपा मांगते हैं कि भक्ति में हम आगे बढ़े। ये सब बात करताल कोई बजाएगा? मुक्ति दादा करताल, कोई करताल वाले हैं दो तीन? मुझे आगे चाहिए होता है, दूर नहीं। ये सब बात करताल बजाओ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तवावतार, पतित पावन हेतु तवावतार, मोतम पठित प्रभु न पैबे आरा, मोतम पठित प्रभु न पैबे आरा, प्रभु नित्यानन्द प्रेमानन्द सुखी प्रभु नित्यानन्द प्रेमानन्द सुखी कृपाकानि कनकरे आमे बर दुखी কৃপা করে আমি বড় দুঃখী দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই তবকে পালে পাই চেতনানি থাই পালে পাই চেতনানি থাই স্বরূপনাথন রূপ রঘুনাথ স্বরূপনাথন রূপ রঘুনাথ ভাতা যোগাসি জীবহ প্রভো লোকনাথ ভাতা যোগাসি জীবহ প্রভো লোকনাথ দয়া কর শ্রীচার্য প্রভু শ্রীনিবাস রামচন্দ্র সঙ্গমগে নরতম দাস রামচন্দ্র সঙ্গমগে নরতম দাস শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করমরে Umabena Hedayana Jagata Samsare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Radha, Parsati Radha, Parsati Radhe. Jai Gauranitai, Gauranitai. Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Sitaram Lakshmana Hanuma, Jai Sitaram Lakshmana Hanuma. Hari Bha, Hari Bha, Hari Bha, Hari Bha. Hare Bha, Hare Bha, Hare Bha, Hare Bha.
Jai Om Shri Pad Paramahansa Prabhupada Satara Sada Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhaktivedanta Bhaktidanda Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Srila Prabhupada Ki Jai Om Ishta Pratham Vidvangisha Bhakti Sananda Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj Ki Shri Sanatana Goswami Tilabhav Divas Ki Shri Vyasa Dev Gaur Purnima Ki Guru Purnima Ki Chaturmasya Ki All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Guranga. Ye peeche se dhoop aa rahi hai, isliye band hai. ताजी हवा आएगी
सन ग्लेयर ओके फिर बंद रहने दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञातमनन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदधिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त प्रणमामि हरि वञ्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। तो जैसे कहा था आज वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। इज समबडी ट्रांसलेटिंग यू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हाट्स योर मदर टंग व्हाट लैंग्वेज इंग्लिश इफ यू सिट इन द बैक मे बी समबडी कैन ट्रांसलेट फॉर यू। गोपाल हरी कैन ट्रांसलेट फॉर यू। आप लोग मोबाइल फोन बंद करोगे कृपा करके। तो जैसे कहा था आज बहुत ही शुभ दिन है। आज महान संत सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है और व्यासदेव जी का आविर्भाव तिथि है जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और आज चतुर्मास्या का पहला दिन है। तो आज का प्रवचन आरंभ करने से पहले मैं दीननायिका मोहन रूपा और वेणु कृष्णा का आभार प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि कल रात को जो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था भक्ति वृक्षा महामिलन हाँ तो ये भक्ति वृक्षा महामिलन का प्रोग्राम बड़े अच्छे रूप से किया था। लगभग 800 भक्त आए थे। मैं पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। जमीन में सब बैठे हुए थे और बाहर स्क्रीन में जो लोग देख रहे थे वहाँ भी भरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि हमें कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि ऑडिटोरियम की कैपेसिटी को डबल किया जाए है ना। नहीं तो फरीदाबाद में बना सकते नया ऑडिटोरियम 1000 आदमियों का, क्योंकि ये ऑडिटोरियम अभी बड़े उत्सव के लिए बहुत छोटा पड़ रहा है। कल तो पूरा भरा हुआ था रात को। तो ये खुशी की बात है कि इस समय दिल्ली में लगभग पिछले 2 सालों में 56 भक्ति वृक्षा के ग्रुप बढ़ गए हैं। 2005 फरवरी में पहले भक्ति वृक्षा की स्थापना की थी। तो पिछले 2 सालों में इस समय दिल्ली में 56 भक्ति वृक्षा के ग्रुप हैं। पर मैं भक्तों को कह रहा था कल रात को कि मिडिल ईस्ट में इस समय इस्कॉन के 700 से अधिक भक्ति वृक्ष के ग्रुप है, और एक मस्कट जैसा छोटा देश, मस्कट की आबादी शराब के दिल्ली की आबादी का आधा भी नहीं होगा, नहीं मस्कट जैसे छोटे देश में 250 भक्ति वृक्ष के ग्रुप है। तो हालांकि पिछले 2 सालों में आपने 156 पर पहुंच गए हो, पर हमें प्रयास करना चाहिए कि दिल्ली में और 1-2 सालों तक, क्या आपका था वो टॉप 2 लाख, 2 लाख भक्तों को जोड़ो ये भक्ति वृक्ष के माध्यम से। और हमें एक और महामिलन करना चाहिए भक्ति वृक्ष के भक्तों का, जिसमें हम सब भक्तों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम में जोड़ें। और हमें ये योजना 3 महीने पहले ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हर भक्त आप 3 महीने पहले से जोड़ोगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की सेवा में, तो मेरे ख्याल से ये साल आप लोग पिछले साल से भी दुगना कर सकोगे। तो आज है सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस। सनातन गोस्वामी जी के विषय में कहा गया है, क्योंकि उनके आविर्भाव दिवस को हम नहीं मनाते, क्योंकि ठीक रूप से किसी को पता नहीं कि उनका आविर्भाव दिन कौन सा। शायद ये कारण है, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी के विषय में केवल उनका तिरुभाव मनाते हैं और आविर्भाव नहीं मनाते। तो दूसरे शब्दों में, सिर्फ साल में एक दिन आप उनका गुणगान कर सकते हो। अक्सर कई संतों के विषय में हम उनकी महिमा का गुणगान आविर्भाव वाले दिन भी करते हैं और तिरुभाव वाले दिन भी करते हैं, पर सनातन गोस्वामी जी के विषय में उनका आविर्भाव हम नहीं मनाते, तो केवल तिरुभाव मनाते हैं। तो हम वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही मनाते हैं। आविर्भाव से अर्थ है वो शुभ अवसर, जबकि महान आचार्य प्रकट करते हैं, और तिरुभाव का अर्थ है जब वो अप्रकट हो जाते हैं। तो भौतिक स्थिति में जब जिस दिन कोई व्यक्ति मरता है या अप्रकट होता है, उस दिन हम शोक करते हैं, आंसू बहाते हैं, पर वैष्णव के विषय में हम आविर्भाव और तिरुभाव दोनों को ही बड़े उत्साह से मनाते हैं। क्योंकि वैष्णव का यह विचार है कि कोई महान संत का अगर तिरुभाव हो भी, तो वो हम किसी और स्थान में भगवान की सेवा कर रहा है। तो आप जैसे जानते हो, चैतन्य महाप्रभु जी के अनेक शिष्य थे, जिनमें से थे वृंदावन के 6 गोस्वामी। श्रीनिवास आचार्य ने श्री श्री गद सद गोस्वामी अष्टका में बड़े सुंदर रचनाओं द्वारा, बड़ी सुंदर 8 रचनाएं हैं, जिनमें उन्होंने 6 गोस्वामियों का गुणगान किया है। तो सनातन गोस्वामी, वैसे कहा जाता है ये 6 गोस्वामियों में सबसे बड़े थे, और रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, उनके 2 भाई थे, रूप गोस्वामी और अनुपम। और कहा जाता है कि वो रूप गोस्वामी से 5 साल बड़े थे आयु में। इनका जन्म हुआ था एक सारस्वत खानदान में, जो कि थे कर्नाटक के, पर निवास कर रहे थे बंगाल में, और उनके रिश्तेदारों में थे राजा, जो कि एक समय कर्नाटक के राजा थे, जीव गोस्वामी जी ने इस विषय की रचना की है। और अनुपम, रूपा और सनातन, उनका सारा दिन केवल एक ही कार्य था, भागवत का अध्ययन, कृष्णा लीला का वर्णन, और जब वो छोटे थे, सनातन गोस्वामी ने छोटेपन से ही भागवत का बड़े गहराई से अध्ययन आरंभ कर दिया था। एक समय उन्हें एक सपना आया था जिसमें एक ब्राह्मण लड़के ने उन्हें एक भागवतम दिया था पढ़ने के लिए, पर जब वो सुबह जागे तो वो लड़का उन्हें दिखा नहीं। फिर जैसे वो अपनी पूजा कर रहे थे तो एक ब्राह्मण लड़का आया हुआ भागवतम ग्रंथ को लेकर, और इस ब्राह्मण लड़के ने कहा आप इस भागवतम को पढ़िए। तो उस दिन से बड़े गहराई से सनातन गोस्वामी भागवत को पढ़ते थे, और उन्होंने बड़े सुंदर रूप से भागवतम की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कृष्ण लीला स्तावा में, ओ भागवत यू आर माई ओनली कंपनी, तुम ही हो मेरे साथी, यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम ही हो मेरे मित्र, एंड यू आर माई गुरु, तुम ही हो मेरे गुरु, यू आर माई ग्रेटेस्ट ट्रेजर, आप हो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति और मेरी सुरक्षा करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको पढ़ने का सौभाग्य मौका मिल रहा है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो सनातन गोस्वामी शुरू से ही भागवत को पढ़ते थे, और हालांकि वो थे बंगाल में, उस समय जैसे आप जानते हो बांग्लादेश नहीं था, तो बंगाल काफी बड़ा था, इसलिए अगर आप आज भी बांग्लादेश में जाओ तो आपको अनेक तीर्थ के स्थान प्राप्त होंगे, जहाँ के हमारे आचार्यों की समाधि है, और जहाँ की चैतन्य महाप्रभु जी उनके भक्तों ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी, इसलिए इस समय इस्कॉन बांग्लादेश में इस्कॉन के लगभग 40 मंदिर हैं, क्योंकि जितने भी तीर्थ के स्थान थे जहाँ की महाप्रभु जी ने दिव्य लीला प्रकट की, या जहाँ महासंतों की समाधि है, इस्कॉन ने हर स्थान में मंदिर खोला हुआ है, तो 40 से अधिक मंदिर हैं इस्कॉन के बांग्लादेश में, कभी यात्रा ले जानी चाहिए भक्तों की वहां। तो जो सनातन गोस्वामी उनके भाई थे बंगाल में रह रहे थे, और वहां के जो जंगले हैं वन, उनको उन्होंने वही नाम दे दिए थे जो कि वृंदावन के वनों का नाम है, मधुवन, और जो कुंड हैं उनको वो नाम देते, उन्होंने नाम दे दिया था राधा कुंड और श्याम कुंड। तो शुरू से ही उनकी लीला रुचि थी केवल आध्यात्मिक कार्यों में, और पूरा समाज उन्हें बहुत आदर देता था। कहा जाता है कि खास करके सनातन गोस्वामी पूरे समाज को मार्गदर्शन देते थे, किसानों को कहते थे फसल कैसे बढ़ाओ, और कहा जाता है कि अगर कुछ लोगों की अनबन भी होती थी तो उनके पास आते थे हल करने के लिए। तो उस समय लगभग 500 साल पूर्व की बात है कि बंगाल में मुसलमानों का राज्य आरंभ हुआ। वैसे कहा जाता है कि अंदाजे से सनातन गोस्वामी जी प्रकट हुए थे 1488 में, पर क्योंकि बिल्कुल ठीक रूप से पता नहीं कौन से दिन, इसलिए उनका विवाह तिथि नहीं मनाते। तो उस समय बंगाल के राजा थे नवाब हुसैन शाह। असल में नवाब हुसैन शाह एक समय एक महान वैष्णव संत सुबुद्धि रॉय के घर में नौकर थे, पर चापलूसी करके राजा बन गए, और जब राजा बने उस समय प्रजा थी लगभग हिंदू। आज अगर आप बंगाल में जाओ तो मुसलमानों की आबादी लगभग 30% पर पहुंच गई है, पर उस समय मुश्किल से 0.1% भी नहीं थी। तो राजा होशियार था राजनीतिक कार्यों में, उसकी इच्छा थी कि कोई ऐसे व्यक्ति को दी जाए जिम्मेदारी शासन करने की जिसमें प्रजा की श्रद्धा हो। तो पहले उन्होंने सूचना भेजी रूप और सनातन इंदो भाइयों को कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग आओ मेरा शासन करो। उनका नाम था अमरदेव और संतोष देव। तो इन दो भाइयों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक कार्य में कोई रुचि नहीं, हमारी तो रुचि है कृष्ण भजन में। पर राजा ने कहा नहीं, मेरा हुक्म है कि तुम यह जिम्मेदारी उठाओ। फिर जबरदस्ती इन दो भाइयों को जोड़ा गया सरकार की सेवा में। रुचि नहीं थी। और रूपक गोस्वामी को उन्होंने बनाया फाइनेंस मिनिस्टर और सनातन गोस्वामी को बनाया प्रधानमंत्री। और फिर क्योंकि उन्होंने मुसलमान राज्य की सेवा आरंभ की तो उन्हें मुसलमान नाम भी स्वीकार करने पड़े। थोड़ी देर बाद रूपक गोस्वामी ने नौकरी त्याग दी थी। एक समय रूपक गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों ने कई पत्र डाले थे चैतन्य महाप्रभु जी को, जिसमें वो कह रहे थे कि हम जबरदस्ती ये नौकरी कर रहे हैं, पर हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ आकर यात्रा करें। पर चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें पत्र में उसमें कहा इस समय मत छोड़ो। और उन्होंने वो प्रसिद्ध उदाहरण दिया जिसका जो उदाहरण प्रभुपाद जी गीता की भूमिका में देते हैं। उदाहरण ये था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री का अगर कोई प्रेमी हो तो घर में तो बड़े सावधानी से सेवा करेगी, पर मन में क्या सोचेगी कब मैं जा सकती हूं प्रेमी को मिलने। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु संदेश दे रहे थे कि नौकरी कर लो पर मन में क्या सोचते रहो असली प्रेमी के विषय में। जैसे कि भगवान ने गीता में कहा है क्या, तस्मा सर्वेश कलेश मन स्मरण युद्ध चा, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो रूपक स्वामी जी समझ गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु एक समय जहां आ रहे थे वृंदावन की ओर झारखंड से, झारखंड है बिहार में शायद, और महाप्रभु झारखंड से बिहार आ रहे थे, झारखंड से वृंदावन, तो रास्ते में मुड़कर रामकेली चले गए बंगाल, जहां की ये दो भाई रह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी के साथी थे वो आश्चर्य हो गए थे कि महाप्रभु जी निकले थे वृंदावन की ओर और पीछे मुड़कर बंगाल चले जा रहे हैं। पर महाप्रभु जी मुड़कर गए किस लिए, इन दो भाइयों को अपना दर्शन देने के लिए। और फिर महाप्रभु ने इन दो भाइयों को अपना दर्शन दिया और थोड़ी देर बाद रूपक गोस्वामी ने नौकरी त्यागी और सनातन गोस्वामी वापस लौटे। सनातन गोस्वामी के ऊपर और भी जिम्मेदारी राजा ने सौंप दी, जो उनके भाई जो काम रूपक गोस्वामी कर रहे थे वो और प्रधानमंत्री का भी। ये जो राजा था इसने युद्ध किया था उड़ीसा के राजा के साथ। उड़ीसा के राजा का नाम था उस समय महाराज प्रताप रुद्र, जो कि बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे। और कई लेखकों ने कहा है कि ये राजा ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था उड़ीसा में। तो सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, उनकी छवि यही थी कि वो जुड़े काम में किनके साथ, चैतन्य महाप्रभु जी के साथ। तो सनातन गोस्वामी ने राजा को सूचना भेजी कि मैं बीमार हूं और क्या कर रहे थे वो ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन कर रहे थे। तो नवाब हुसैन शाह ने संदेश भेजा, लौटो अपनी जिम्मेदारी का पालन करने के लिए। सनातन गोस्वामी ने की रुचि नहीं थी और राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा ये देखने के लिए कि क्या बीमारी है सनातन को। आजकल अगर कोई आपके घर में आना चाहे तो घंटी बजाता है और आप पूछते हो कौन है, है ना, पर उन दिनों में यह सुविधा शायद नहीं थी। तो डॉक्टर साहब सीधा अंदर आ गए। जब अंदर आए तो उन्होंने क्या देखा, सनातन गोस्वामी पंडितों के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो जब राजा को यह सूचना मिली कि सनातन का स्वास्थ्य ठीक है और वो केवल शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं पंडितों के साथ, तो उन्होंने कहा कि यहां तुम अपनी जिम्मेदारी में वापस लौटो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल खाने भेज दूंगा। राजा थे, कुछ भी कर सकते थे उन दिनों में, तो सनातन को जेल में डाल दिया था। जब रूपा गोस्वामी ने अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी त्यागी, उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि उन्होंने आधी संपत्ति तो बांटी 50% ब्राह्मणों की सेवा में, 25% उन्होंने बांटा रिश्तेदारों को और 25% उन्होंने रखा कुछ ब्राह्मणों के साथ भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। तो सनातन गोस्वामी जब जेल में थे, उन्होंने जेलर कैदी को कहा, जेलर को क्या कहते हैं, जेलर जो जेल के सिपाही होते हैं, उनको कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं मक्का जाना चाहता हूं। उसने कहा भाई आप तो इतने बड़े कैदी हो, आपको छोड़ूंगा तो राजा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। खैर उसी समय सनातन गोस्वामी को पत्र आ गया था कि भाई का, कि मैंने थोड़ी रकम यहां छोड़ी है 10,000 सोने के सिक्के। तो फिर उन सोने को सिक्कों को लेकर और उनके द्वारा सनातन निकले जेल से और रास्ते में वो रुके एक रात के लिए, क्योंकि छुप छुप कर वो जा रहे थे। तो छुप छुप कर जा रहे थे तो रास्ते में वो रुके और मिले, एक रात के लिए रुके कहाँ, एक गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में सराय में रात को रुके। तो उनके साथ उनका नौकर था जिनका नाम था ईशान, जिसने 8 सोने के सिक्के अपने पास रखे थे। तो सराय का जो मालिक था बड़े सावधानी से सेवा कर रहा था, आगे पीछे दौड़ रहा था। तो सनातन गोस्वामी का राजनीति का अभ्यास था, वो समझ गए कि इस आदमी को कुछ लालच होगा, इतनी मेरी खातिर कर रहा है, आपकी कोई खास खातिर करे तो आप भी शक करते हो शायद उसको कुछ चाहिए होगा। तो सनातन ने अपने सेवक से पूछा, तुम कुछ संपत्ति तो नहीं उठा रहे अपने साथ? तो ईशान ने कहा, मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं, थे 8। तो सनातन ने कहा कि तुम मौत को क्यों साथ ले जा रहे हो, क्योंकि धन हो तो कोई लूटेगा मारेगा। सनातन ने वो 7 सिक्के लेकर वो सराय के मालिक को दे दिया। सराय के मालिक के पास एक जोशी था, क्योंकि हर यात्री जब आता था वो अंदाजा लगा लेता था ये धनी है गरीब है कितनी संपत्ति है। तो उसने सराय के मालिक को कहा था ये तो बड़ा धनी यात्री है, इसके पास तो 8 सोने के सिक्के हैं। तो बड़े ध्यान से उनकी देखभाल की जा रही थी। तो सनातन ने सराय के मालिक को सोने के सिक्के दिए और कहा आप इसे लीजिए। उसने कहा नहीं 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 तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैं तो तुम्हें आज रात को मारने वाला था इससे उन्हें किसी के लेने के लिए। खैर सनातन ने कहा कि आप नहीं लोगे तो कोई और मुझे मारेगा ये लेने के लिए, तो आप ही ले रहे हो। तो सनातन गोस्वामी जा रहे थे बनारस की ओर, रास्ते में वो रुके उनके रिश्तेदार श्रीकांत के घर में। श्रीकांत धनी व्यक्ति था जिसके पास 3,000 सोने के सिक्के थे। वो आया था मुसलमान राजा के लिए घोड़ों को खरीदने के लिए। उसने जब सनातन को देखा दाढ़ी से भरा हुई और वो जा रहे फटे हुए कपड़ों के साथ, उन्होंने उन्हें निमंत्रण दिया वहां रहने के लिए, पर सनातन की कोई रुचि नहीं थी। फिर सनातन महाप्रभु जी को मिले वाराणसी में। तो सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु जी से बड़ी गहरी शिक्षा प्राप्त की और चैतन्य महाप्रभु जी उन्हें 4 मूल सेवाएं दी थी। पहली सेवा दी थी यह कि आप ब्रज में जाकर उन स्थानों की स्थापना करो जहां की चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की है, भगवान जहां की भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की है। आज तो आप ब्रज में जाते हो कहते हो हाँ यहाँ ये लीला भगवान कृष्ण ने प्रकट की थी, यहाँ ये लीला कैसे कर पाते हो? चैतन्य महाप्रभु जी और 6 गोस्वामियों की असीम कृपा के कारण उन्होंने ये स्थापना की है। बड़े ध्यान से खोज किया, रिसर्च किया कि किस किस स्थान में चैतन्य महाप्रभु जी ने कौन सी लीला प्रकट, कृष्ण भगवान ने कौन सी लीला प्रकट की थी। फिर महाप्रभु जी ने उन्हें आदेश दिया कि भगवान के 8 विग्रह की स्थापना करो। आज आप वृंदावन में जाते आप कहते हैं 5,000 मंदिर हैं उधर, है कि नहीं? पर सबसे पहले मंदिर किसने स्थापना की? इन गोस्वामियों ने। गोस्वामी से पहले जो मंदिर थे उन्हें मुसलमान राजाओं ने नष्ट कर दिया था, क्योंकि उत्तर भारत में तो मुसलमानों का शासन था, तो उन्होंने वृंदावन के कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था। फिर ये इन आचार्य विग्रह की स्थापना किसने की? गोस्वामी ने, खास करके सनातन गोस्वामी ने श्री राधा मदन मोहन मंदिर की स्थापना की, और ये कथा हम आपको सुनाएंगे थोड़ी देर में। फिर आगे उन्होंने कहा कि हाँ भक्ति के नियमों के ऊपर ग्रंथों की रचना करने के लिए, और इसलिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जिसमें आपको भक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। और आगे उन्होंने कहा कि भक्ति संबंधित शिक्षा का प्रचार करो। कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी का प्रचार इतना बढ़ गया था कि मुसलमान राजा अकबर भी गए थे वृंदावन में उनका दर्शन लेने के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, हरि भक्ति विलास जिनका वर्णन बार बार सुनते हो, और अनेक और ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन में जाकर बड़ा सादा जीवन बिता रहे थे मधुकरी करके। अंदाजा लगाओ एक समय रूपक गोस्वामी के पास इतना धन था कि एक पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर रूपक गोस्वामी जो के खजान मंत्री थे उनके पास इतने धन था तो प्रधानमंत्री के पास कितना धन होगा। पर उन्होंने सब कुछ ब्राह्मणों को बांट दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो भी इनके साथी थे, जो एक करोड़पति पिता के पुत्र थे, उन्होंने भी सब कुछ त्याग कर गए वृंदावन में। और वृंदावन में वो कैसे रहते थे? मधुकरी करके। मधुकरी का अर्थ है जैसे एक मधुमक्खी
एक फूल से दूसरे फूल जाती है, थोड़ा सा जो आवश्यक वही लेती है। तो ये एक मधुकरी करके घर घर जाकर भीख मांगते थे और थोड़ा सा ही खाते थे। तो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में और मथुरा में मधुकरी कर रहे थे, तो इसके दौरान एक चोबी नाम के खानदान के घर में वो गए, जिनके पास एक बहुत ही सुंदर विग्रह था जिनका नाम था मदन मोहन। तो ये चोबे खानदान ब्राह्मणों का खानदान था। सनातन गोस्वामी ने जैसे उस विग्रह का दर्शन लिया, इतने आकर्षित हो गए, उनकी इच्छा यही थी कि दिन रात इस विग्रह का स्मरण करते रहे। पर विग्रह तो उनका नहीं था, चोबे खानदान का था। और चोबे खानदान की जो पत्नी थी, उनका एक पुत्र था जिनका नाम था सनातन। तो वो अपने पुत्र को और मदन मोहन विग्रह को एक समान दोनों की सेवा करती थी। और सनातन इतने प्रभावित हो गए थे, आकर्षित हो गए थे इस विग्रह की खूबसूरती से, कि उनकी इच्छा यही थी कि किसी प्रकार से विग्रह उन्हें प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने चोबे खानदान से पूछा, ये विग्रह मुझे प्राप्त हो सकता है? उन्होंने कहा, नहीं, ये तो हमारा बेटा है। फिर सनातन ने कुछ खानदान की धर्मपत्नी से कहा कि आपको बेटे जैसे तो पूछते हो, अच्छा है, पर आपको भगवान, ये तो आपके इष्ट देव हैं, इनकी आपको खास पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी किसी न किसी बहाने चोबे खानदान के घर में पहुंच जाते थे। उनका असली भाव था मदन मोहन का दर्शन लेने के लिए। एक दिन मदन मोहन विग्रह ने सपने में कहा चोबे खानदान की पत्नी से, श्रीमती चोबे से, कि ये जो सनातन आता है रोज आपके घर में, इसकी बड़ी इच्छा है कि मैं उसके घर में रहूं, तो आप मुझे दे दो उन्हें। तो अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए, तो श्रीमती चोबे ने कहा, आप इस विग्रह को ले जाओ, क्योंकि भगवान ने सपने में आदेश दिया था। तो सनातन के पास से कोई रहने का ठिकाना नहीं था। जमुना किनारे एक पेड़ के नीचे रह रहे थे, तो उन्होंने अपने कमरे के पड़ोस में ही एक कुटिया बनाई, जिसमें उन्होंने मदन मोहन की उपासना शुरू कर दी। सनातन जब मधु कर करके रह रहे थे, तो बहुत सादा जीवन था। मिट्टी से बनाते थे कुछ, और सूखी चपाती भोग में अर्पण करते थे। एक दिन विग्रह ने कहा कि सनातन, कुछ और खिलाओ मुझे, क्या रोज सूखी चपाती नमक के साथ खिलाते हो? और सनातन को सूचना मिली कि उनका भाई आने वाला है उन्हें मिलने के लिए। सनातन के हृदय में इच्छा प्रकट हुई कि जब मेरे भाई आएंगे, मुझे उन्हें कोई खीर, कुछ अच्छा भोजन खिलाना चाहिए। तो सुविधा तो थी नहीं, हालांकि एक समय इनके पास इतना धन था। अब वो रह रहे थे एक गरीब ब्राह्मण के रूप में ब्रज में। तो एक राधा रानी जी ने एक खूबसूरत लड़की का रूप ग्रहण करके चीनी, दूध और सब सुविधा ले गए और सनातन को दिया और कहा कि खाओ ये, और रूप दिया। तो सनातन समझ गए, जब रूपक गोस्वामी ने बड़ी अच्छी खीर बनाई थी, तो सनातन समझ गए ये खीर कैसे बनी है, क्योंकि रूपक गोस्वामी राधा रानी ने लड़की का रूप ग्रहण करके ये सब सुविधा दी थी। तो उन्होंने अपने भाई को डांटा, तुमने भगवान से सेवा ले ली। तो सनातन गोस्वामी अपने विग्रह की पूजा कर रहे थे, पर उनके मन में इच्छा थी कि एक मंदिर बनाया जाए इनके लिए, पर कोई सुविधा तो थी नहीं। तो एक व्यापारी अपने नाव में जा रहा था, और इस व्यापारी की नाव फंस गई रास्ते में। तो व्यापारी के नाव में बहुत धन था, महंगे गहने वगैरह, तो उसके हृदय में चिंता थी कि अंधेरा आ रहा था कि हम यहां फंस गए तो डाकू आएंगे, रात को सब लूट लेंगे। तो वो देख रहा था कोई चारों तरफ कोई व्यक्ति है, जैसे आप कभी अंधेरे में हो एकांत के स्थान में तो आप ढूंढते हो कोई साथी मिल सकता है यहां। तो उन्हें दूर में देखा कि कुटिया में थोड़ी रोशनी दिख रही है, तो वो गए वहां। वहां सनातन गोस्वामी अपना भजन कर रहे थे और पड़ोस की कुटिया में थे उनके विग्रह मदन मोहन की पूजा। तो उस व्यापारी ने कहा, मेरी समस्या है कि मेरी नाव फंस गई है, मेरी नाव गहनों से भरी हुई है, मुझे डर है कोई डाकू नहीं आ जाए रात को लूटने के लिए। तो सनातन ने उन्हें भेज दिया अपने विग्रह के पास पूजा के लिए। तो भिखारी व्यापारी ने पूजा की कि मेरी नाव अगर निकल जाए किसी प्रकार से, तो जैसे वो लौट रहा ही था बहुत तेजी से लहर आई तो नाव जब फंसी हुई थी वहां से हिलने लग गई। फिर उस व्यापारी ने यह प्रार्थना की थी कि अगर मेरी नाव निकल जाए यहां से जो तो जो मैं पैसा कमाऊंगा वो लाकर मैं आपके लिए आपकी सेवा में अर्पण करूंगा। तो व्यापारी ईमानदार था तो आगरा जाकर उसने बहुत पैसा कमाया माल बेचकर, तो वो धन लेकर आया और उसने अर्पण किया सनातन जी को। पर सनातन गोस्वामी ने कहा इसी धन से तुम इस मंदिर की मंदिर बनाओ मदन मोहन के लिए। तो फिर उन्होंने मदन मोहन का मंदिर बनाया और फिर थोड़ी देर बाद राधा रानी जी की मूर्ति को वहां साथ में जोड़ा गया था। तो सनातन गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की और रोज वो गोवर्धन का परिक्रम करते थे, बूढ़ी आयु में भी गोवर्धन का परिक्रम करते थे। 1108 बार गोवर्धन को प्रणाम करते थे और जो भी वैष्णव आता था उन्हें मिलने के लिए उसे भी वो प्रणाम करते थे। तो बूढ़े हो रहे थे सनातन गोस्वामी। तो गोवर्धन ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, अब तुम बूढ़े हो रहे हो परिक्रम करना बंद कर दो, अब तुम्हारे बस का नहीं, तुम 24 किलोमीटर की परिक्रम करो रोज। पर सनातन ने कहा नहीं, मैं परिक्रम बंद नहीं कर सकता। तो भगवान भक्तों की सेवा करते हैं इसलिए भगवान के अनेक नामों में एक नाम है भक्तावत्सल, भक्तों के बड़े प्रेमी हैं। भक्त प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान प्रयास करते हैं भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान ने एक और दिव्य लीला प्रकट की, उन्होंने अपनी बंसरी बजाई एक गोवर्धन शिला पर खड़े होते हुए, और बड़ा पहाड़ था वो पहाड़ फिर पिघल गया बंसी की बंसी को सुनकर, और उस पहाड़ के पिघल भी गया पत्थर, और उस पत्थर में भगवान के चरण कमलों की निशानी भी है। तो फिर भगवान ने कहा सनातन से कि अगर तुम इस पत्थर की परिक्रम करोगे रोज तो ये माना जाएगा कि तुम गोवर्धन की परिक्रम कर रहे हो, क्योंकि चार बार अगर इस पत्थर की परिक्रम करोगे तो ये माना जाएगा कि आप गोवर्धन की परिक्रम कर रहे हो। क्योंकि सनातन बूढ़े हो गए थे, बहुत ही कठिनाई से गोवर्धन की परिक्रम कर रहे थे। 40 से अधिक सालों के लिए सनातन ने ब्रज की परिक्रम की बकायदा, और ब्रज के हर स्थान में गए और ब्रज के लोगों को उपदेश देते थे। वहां उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और उन स्थानों को खोजा जहां की चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी, भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जिसके विषय में आप चैतन्य चतुर्मिता की मध्य लीला के 22वें अध्याय में प्राप्त करते हो। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति संबंधित शिक्षा दी थी दोनों भाइयों को, रूपक को और सनातन को। महाप्रभु जी ने कहा किस प्रकार भज्जी अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जैसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मंद ब्रमीते कोनो भगवानो जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि ये भक्ति का बीज कैसे उगता है, ये भक्ति का बीज उगेगा अगर आप उसे श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम से पानी पिलाओगे। और आगे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि अगर आप अपने आप को माया के प्रभाव से बचाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, साधु संगत में रखना चाहिए। और फिर उन्होंने आगे शिक्षा दी किस प्रकार हमें भगवान के शरणागत होने के 6 नियम हैं, उनके विषय में उन्होंने कहा जो भक्ति के लिए अनुकूल है स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो सनातन गोस्वामी वैसे मंजारी के अवतार हैं और मंजारी उन्हें कहा जाता है जो कि गोपियों का सहयोग देती हैं राधा रानी जी की सेवा में। सनातन गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, उनके भाई रूपा और सनातन के साथ रूपा और जीवा गोस्वामी और जीवा गोस्वामी के प्रयास से राधा दामोदर मंदिर की स्थापना हुई, राधा गोविंद जी मंदिर की स्थापना हुई रूपा गोस्वामी जी के प्रयास से। और फिर राधा गोविंद विग्रह को ले गए थे कहाँ, जयपुर में, जब मुसलमानों का शासन चल रहा था यहाँ, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ अनेक विग्रह हैं जिनकी स्थापना हमारे आचार्यों ने की थी पर मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए वहाँ ले गए थे जयपुर में, क्योंकि उस समय वहाँ हिंदू राजा था। तो हमें आज इस शुभ अवसर पर सनातन गोस्वामी जी ऐसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है। चैतन्य चरितमृत में उनकी अनेक लीलाओं का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे सब शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य है मेरा सनातन गोस्वामी। सनातन और रूपा ने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी सर्वभौम भट्टाचार्य के भाई, इनका नाम था विद्याचार्यपति, उनसे। और फिर कई कहते हैं कि उन्होंने दीक्षा भी उनसे ली थी और फिर उन्होंने शिक्षा ली थी चैतन्य महाप्रभु जी से। तो सनातन गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं जिनके विषय में हमें भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस शुभ अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे भीख मांगनी चाहिए, क्या, क्योंकि हमें कृपा प्राप्त हो जिसके द्वारा हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। ये जो हमने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु भजन गाया था उसमें वो कहते हैं अहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्टयुग सीजीव सीजीव लोकनाथ, कि आप स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी सब मेरे पर कृपा कीजिए कि मैं भक्ति के मार्ग के द्वारा परम भगवान कृष्ण के समर्पण हो सकूं। तो इसी प्रकार हमें भी सनातन गोस्वामी की भीख मांगनी चाहिए कि हम उनकी कृपा से भक्ति में आगे बने। हरि भक्ति विलास उनके ग्रंथों में भक्ति संबंधित शिक्षा, भक्ति के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए और उन नियमों का पालन करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो आज जैसे आप जानते हो व्यासदेव जी का भी आविर्भाव दिवस है, वैसे तो भारत में इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, है ना, पर हमारे इस्कॉन में और हमारे वैष्णव संप्रदाय में हम जो गुरु का असली आविर्भाव का दिन है उसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो उनकी माता का नाम था सत्यवती, पिता का नाम था पराशर मुनि और व्यासदेव जी को भगवान का अवतार माना जाता है। भगवान व्यासदेव जी के रूप में प्रकट हुए थे किस लिए, भक्ति संबंधित शिक्षा हमें देने के लिए। और व्यासदेव जी ने हमें ये शिक्षा दी है वैदिक साहित्य में। तो व्यासदेव जी ने वैदिक साहित्य में शिक्षा दी है, उन्होंने पहले एक वेद की रचना की थी, फिर उसका विभाग चार भागों में हुआ, फिर कई उपनिषद का वर्णन किया। पर इन सब शास्त्रों का वर्णन करने के पश्चात भी व्यास देव को क्या महसूस हो रहा था कि मेरे कान में कोई टूटी रह गई है। तो सारस्वती नदी के तट पर वो चिंतन कर रहे थे, क्या कारण है कि मैंने इन सब ग्रंथों की रचना की, जब भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मेरा काम अधूरा रह गया है। जैसे वो ये विचार कर रहे थे, वहां पहुंचे नारद मुनि जी, उनके गुरु। और नारद मुनि ने कहा कि इस निराशा का क्या कारण है, क्योंकि तुमने वो ग्रंथ नहीं प्रस्तुत किया जिसमें केवल शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और फिर उन्होंने हमें क्या दिया, श्रीमद् भागवतम निगाम कल्प ग्रोर गलितम फलम, जिसे वैदिक साहित्य का सबसे थका हुआ फल माना जाता है और जिसमें केवल शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। और हमने आपको सुनाया थोड़ी देर पहले किस प्रकार सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की प्रशंसा की और कहा ये असली संपत्ति है। इसीलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में भागवतम का अध्ययन रोज किया जाता है। और कहा गया है भागवतम में ही, नस्त प्रेषु अवद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती तम श्लोके भक्ति भावती नहीं सकी, कि जो भक्त ध्यान पूर्वक ध्यान से रोज भागवतम को सुनेगा तो उसके हृदय में भक्ति भावना आवश्यक ही उत्पन्न होगी और जो माया रूपी विचार है वो नष्ट होंगे। इसलिए हमें भागवतम को ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि आप रोज मंदिर नहीं आ सकते तो घर में भागवतम को पढ़िए। और भागवतम को ध्यान से पढ़ोगे, शनमता स्वाकथा कृष्णा पुण्य श्रवणा कीर्तना, तो भागवतम को ध्यान से सुनोगे पढ़ोगे तो आपकी अज्ञानता दूर होगी और आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो आज व्यासदेव जी का आविर्भाव तिथि है, तो व्यासदेव जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे भी हम भीख मांगते हैं क्या, कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो कि हम तन मन धन से उनके शरणागत हो सकें। सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि की, व्यासदेव गुरु पूर्णिमा की। तो आज अभी खत्म नहीं हुआ भाई, आज ये चतुर्मास का भी क्या है, पहला दिन है चतुर्मास के, चार महीने का चतुर्मास होता है और ये आरंभ हो रहा है आज चतुर्मास के साथ। तो वैसे तो प्राचीन समय में संत महात्मा जो हैं यात्रा करते थे सारे साल, पर चतुर्मासिया चार महीने के लिए खास करके बारिश के मौसम में एक स्थान में रहकर वो भगवान का भजन करते थे। जैसे आप नारद मुनि जी के विषय में पढ़ते हो कि चतुर्मासिया के समय उनकी माता को मौका मिलता था संतों की सेवा करने के लिए, जिसके कारण नारद मुनि जी छोटे से बालक थे उन्हें भी संतों की संगत प्राप्त होती थी, उनके द्वारा उपदेश सुनने का मौका मिलता था। तो चार महीने चतुर्मास्या के, वो पहला चतुर्मास्या शुरू हो रहा है आज से। तो पहला महीना चतुर्मास्या का श्रवण का महीना, जो कि आज से आगे एक महीने तक चलेगा, जिसमें हम साग या घास साग या हरे पत्ते की सब्जी नहीं खाते। फिर अगला महीना है बद्रा का महीना, वो अगले महीना अगस्त से सितंबर चलेगा, जिसमें हम दही नहीं खाते। और फिर अगला महीना है आश्विन, जिसमें हम एक महीने के लिए दूध नहीं पियेंगे। और फिर आता है कार्तिक का महीना, जिसमें हम उड़द दाल नहीं खाते। तो वैसे जो वैष्णव हैं जिन्होंने जीवन समर्पण किया है भगवान के सेवा में, वो तो इतना ध्यान नहीं देते, पर ये जो चार नियम हैं जिनका उसका तो हम पालन करते हैं। और कहा है शास्त्र में कि जो व्यक्ति चतुर्मास्या के समय तपस्या नहीं बढ़ाए तो वो व्यक्ति जो है नरक में जाता है। तो चतुर्मास्या के समय हमें जब तपस्या बढ़ा देनी चाहिए। जो व्यक्ति 16 माला करें वो भी 16 माला भी तपस्या है। 16 माला का जहां बकायदा करें थोड़ा ज्यादा कर सकते तो ज्यादा भी कर सके तो अच्छा है। और शास्त्रों का अध्ययन बढ़ा दो, प्रचार बढ़ा दो। वैसे तो शास्त्र में कुछ थोड़ा वर्णन है और गहरी तपस्या का, वो करना आवश्यक नहीं है। तो अगर आप चाहो तो मैं पढ़कर सुना दूं। खा गया है, अगर आप नमक नहीं खाओ तो आपका कंठ ज्यादा मीठा हो जाता है। फिर कुछ तेल नहीं खाओ तो कहा जाता है कि आयु बढ़ जाती है। और तेल का मसाज मत लो तो आपका शरीर ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। और तेल के बगैर खाना और जो फूल भगवान को भोग नहीं लगे हो वो नहीं पहनना चाहिए। और कच्चा खाना खाओ तो अच्छा है। ऐसे शास्त्रों में अनेक नियम दिए गए हैं चतुर्मास में। जैसे भगवान के चरण कमलों को छुओ, भगवान के मंदिर को आके साफ करो, भगवान के मंदिर का परिक्रम करो, भगवान का गुणगान करो, मंदिर में बैठकर कीर्तन करो। तो जो कीर्तन के भक्त हैं अगर मंदिर में कीर्तन करें ठीक समय तो ज्यादा अधिक लाभ मिलता है। और चतुर्मास्य के समय कहा जाता है शास्त्रों को और ध्यान से पढ़ो, भगवान विष्णु की सेवा करो, हो सकता है तो 2-3 बजा खाने की जगह एक दफा खा सकते हो। कई भक्त हैं चतुर्मास्य के समय 2-3 बार खाने के बजाय दिन में एक बार खाते हैं। और अगर आप चाहो तो एक ही दफा खाओ शाम के समय या दोपहर के समय। और रोज स्नान करो, सारा पत्ते में खाओ थाली में खाने के बजाय। तो ऐसे अनेक नियम हैं। पर जो भक्त जिन्होंने जीवन समर्पण किया है भगवान के सेवा में, जो बकायदा 16 माला का जाप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो तो फिर सारा साल ही चतुर्मास्य का पालन कर रहे हैं। ये नहीं कि हम केवल चतुर्मास्य के समय नियमों का पालन करें और बाकी समय नहीं करें। तो असली समर्पण है सारा साल। ये 4 महीने जो हैं, अगर आप इन 4 महीनों में थोड़ी तपस्या बढ़ा दो, जप बढ़ा दो, शास्त्रों का अध्ययन बढ़ा दो, तो ये अच्छा रहेगा, प्रचार बढ़ा दो। तो ये 4 महीने जो माने जाते हैं सबसे शुभ भगवान के चरणों में समर्पण करने के लिए। तो आज इसका पहला दिन है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि की, व्यासदेव जी के अवर भाव तिथि की। हरे कृष्ण। ठीक है,
महाराज की।